नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, अररिया और भागलपुर समेत 10 जिले बाढ़ की चपेट में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए सीयूईटी यूजी के प्रभावित विद्यार्थियों के लिए 19 जुलाई को दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। मधुबनी जिले की मेनका मलिक नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित। और राज्य सरकार ने जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में विशेष न्यायालय का गठन किया। अब समाचार विस्तार से। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते राज्य की कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, कमला बलान, महानंदा और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति है। बागमती और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से सीतामढ़ी के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इधर कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले के कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,70,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में छोड़ा गया, जिससे जिले में विभिन्न स्थानों पर तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है।
योगापट्टी प्रखंड के 3 पंचायत के 1 दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ का पानी फैला हुआ है। गंडक नदी के उफान से योगापट्टी के सिसवा, मंदातापुर, गोरिया टोली, पूरब टोली, बिनटोली, जबलपुर, खुटवनिया, बैसिया जैसे गांव बाढ़ से प्रभावित है। मधुबनी प्रखंड के भी कई गांवों का बाढ़ के कारण प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन की ओर से माइकिंग कर लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने और बाढ़ राहत शिविर में शरण लेने की अपील की जा रही है। वहीं बगहा क्षेत्र में भी गंडक नदी के पानी ने मुश्किल बढ़ा दी है। नैनहा ढाला से लेकर नैनहा गांव तक नदी के दबाव के कारण सड़कें पानी में बह गई है। इधर भीतहा प्रखंड के सेमरवारी पंचायत अंतर्गत करगैया बसौली मुख्य मार्ग वर्षा के पानी के तेज बहाव के कारण टूट गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
गोपालगंज से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। हालांकि गंडक नदी के किनारे बसे निचले इलाकों में अब भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। सदर प्रखंड के रामनगर, जागीरी टोला, मलाही टोला में सड़कों पर बाढ़ का पानी फैला हुआ है। लोगों को इन क्षेत्रों में नाव से आवाजाही करनी पड़ रही है। जिला प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को 2 सरकारी नाव उपलब्ध कराए गए हैं। निजी नौकाओं का भी परिचालन किया जा रहा है। मधुबनी जिले में कई स्थानों पर बाढ़ का पानी फैलने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
जिले के विभिन्न भागों में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। नरनिया प्रखंड के खाजेडी गांव में धवन चौक के पास त्रिशूला नदी का पानी खोटौना से जयनगर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बह रहा है। इससे इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो गया है। पानी के अधिक दबाव के कारण कई स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। अंचलाधिकारी कुमार राजीव ने स्थल का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। इधर दनरारा पुल, सिंघवा और मुनहारा नदी के बिलाही चौक पर कटाव होने से भारी वाहन का आवागमन प्रभावित हो सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन।
सुपौल से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव फिलहाल जारी है।
सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव फिलहाल जारी है। हमारे जिले के बाढ़ प्रभावित 5 प्रखंड सुपौल सदर, किशनपुर, निर्मली, सरायगढ़, भपटियाही एवं मरौना के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी जमा है, जबकि ऊंचे स्थानों पर से बाढ़ का पानी निकल गया है। पिछले कुछ दिनों से कोसी नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। भीमनगर कोसी बराज से 1,37,000 क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज किया गया। इससे पूर्वी कोसी तटबंध के स्पर की नोज पर पानी का दबाव बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग की टीम द्वारा स्पर को सुरक्षित रखने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बीते चार दिनों से हो रही बारिश से परमान समेत अन्य सहायक नदियों का पानी सिकटी, पलासी, जोकीहाट, कुर्साकांटा, नरपतगंज सहित आधा दर्जन प्रखंडों के कई गांव के निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल कैंप के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य जांच के साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाओं का वितरण कर रहा है। इधर दरभंगा जिले से गुजरने वाली कमला बलान, बागमती, करेह, कोसी, अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि घनश्यामपुर में कमला बलान नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। इससे नदी के दोनों तटबंधों के बीच बसे बार, नवटोली, मुसहरी सहित लगभग 10 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन गांवों का प्रखंड और जिला मुख्यालयों से संपर्क भंग हो गया है। इधर भागलपुर जिले में नवगछिया अनुमंडल में गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
दोनों नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से निचले और ज्यारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों में दहशत व्याप्त है। नवगछिया बाढ़ नियंत्रण कार्यालय के अनुसार पिछले 12 घंटे में गंगा नदी में 19 सेंटीमीटर और कोसी नदी में 16 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। इधर कहलगांव प्रखंड के बिरबन्ना पंचायत के कई गांवों में तेज कटाव हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, दरभंगा, मधुबनी समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान अररिया और किशनगंज में भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एसके सुमन ने बताया कि इस सप्ताह चक्रवाती परिसंचरण के कमजोर पड़ने के कारण मानसूनी गतिविधियों में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इसके चलते तापमान में बढ़ोतरी की भी संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान लखीसराय, नवादा, नालंदा, खगड़िया, मधेपुरा और पूर्णिया जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 12.5 सेंटीमीटर बारिश लखीसराय के हलसी में हुई है। वहीं बेलदौर में 11.5 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG के प्रभावित विद्यार्थियों के लिए 19 जुलाई को पुनर्परीक्षा आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि 1000 से अधिक परीक्षार्थियों के लिए आयोजित ये परीक्षा कम्प्यूटर आधारित होगी। विषय कोड का उल्लेख करते हुए उन्हें ईमेल भेज दिया गया है। जल्द ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। NTA ने कहा है कि विशेषज्ञों से मिले फीडबैक के आधार पर प्रश्नों का उत्तर तैयार किया जा रहा है। इसे आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में विशेष न्यायालय का गठन किया है। इन न्यायालयों में निजी कंपनियों, NBFC और चिटफंड कंपनियों के पैसा लेकर फरार होने के मामलों की सुनवाई की जाएगी। इन प्रमंडलों में पटना, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मगध, सारण और मुंगेर में विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस आज लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर समीक्षा बैठक करेगी। पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में सभी जिला अध्यक्षों के साथ पटना स्थित पार्टी मुख्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई थी। पार्टी ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। नेपाल में केपी शर्मा ओली आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह काठमांडू में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए 72 वर्षीय ओली श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का स्थान लेंगे, जो शुक्रवार को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ैल ने CPM, UML और नेपाली कांग्रेस गठबंधन के नेता चुने गए श्री ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने पैकेट बंद वस्तुओं में समानता बनाए रखने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। संशोधन में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफार्मों पर खुदरा बिक्री के लिए प्री पैकेज्ड वस्तुओं की सभी जानकारी घोषित करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधन से पैकेटबंद वस्तुओं के लिए समान मानक और जरूरतें स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे विभिन्न ब्रांडों और उत्पादों में स्थिरता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं को संपूर्ण जानकारी के आधार पर विकल्प चुनने में भी मदद मिलेगी। हालांकि नए नियम औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैकेटबंद वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे। विभाग ने इस महीने की 30 तारीख तक हितधारकों से विचार आमंत्रित किए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
मधुबनी जिले की मेनका मलिक को नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्रीमती मेनका को पिछले दिनों बेंगलुरु में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। श्रीमती मलिक खजौली प्रखंड क्षेत्र के कन्हौली पंचायत के मलिक टोला गांव की निवासी हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर स्कूल में नामांकन के लिए प्रथम चयन सूची के अंतर्गत 19 जुलाई तक का समय निर्धारित किया है। औरंगाबाद जिले में एसटीएफ की टीम ने 1,00,000 रुपए के इनामी नक्सली बिहारी जी उर्फ बिहारी रवानी को गोह थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली पर देशद्रोह कानून के तहत कई मामले दर्ज हैं। मधुबनी जिले में लदनिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने 42 लीटर शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बिहार लोक सेवा आयोग ने किए कई बड़े बदलाव। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, आखिरकार 46 वर्षों के बाद खोला गया पुरी जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। दैनिक भास्कर लिखता है, राजस्व मंत्री ने माना बिना पैसे कोई काम नहीं कर रहा। प्रभात खबर ने लिखा है, दनियावा में सीमेंट और सिकंदरपुर में बिस्कुट की लगेगी फैक्ट्री, इसी साल से होगा उत्पादन शुरू। आज अखबार का शीर्षक है, राम सेतु के रहस्यों का पता लगाने में मिली सफलता, इसरो ने नासा के साथ मिलकर तैयार किया समुद्र के नीचे का पहला नक्शा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, अररिया और भागलपुर समेत 10 जिले बाढ़ की चपेट में। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए सीयूईटी यूजी के प्रभावित विद्यार्थियों के लिए 19 जुलाई को दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा। मधुबनी जिले की मेनका मलिक नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित। और राज्य सरकार ने जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में विशेष न्यायालय का गठन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।